কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধ জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নমস্তুতে তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বিষভানুসিতে দেবী প্রণামামি হরি হা দেবি কাকু ভরগদ গদয়াদ্য বাচা জাতি নিপত্ত ভুবি দণ্ডবত উদ্ভতারতি আশ্য প্রসাদম বুদস্য জনস্য কৃত্বা গন্ধর্বিকে তব গণে গণনাঙ্গি অঙ্গশ্যামলিন ছটাভিরভিতো মন্দে কৃতেন্দীবরম জদ্দঞ্জাবুদরুচি সংবিদতং পট্টম্বরস্য বৃন্দারণ্য নিবাসিনম হৃদিলসদ্দামাভিরামোদরম রাধাস্কন্দনিবেশিতোজ্জ্বল ভুজম ধ্যায়েন্দামোদর প্রব্রজন্তমনুতে তমপেতকৃত্যম দ্বৈতায়নো বিরহকাতরযা জুহাব পুত্রেতি তন্ময়তয়া তর্বভিনেদু তং সর্বভূতহৃদয়ম মুনিমানুতোস্মি তদৈবাস্মি ন জুহামি ত্বয়া বিনা ইতি বিজ্ঞায় রাধে তং নেমানুচরণ রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় চৈতামৃত আদি পরিচ্ছেদ বিষয় বহু গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ কাহানি খিসা নেই খুব বিস্তৃত চিত্র সে শুনলে সে কিছু সমঝ মে আয়েগা ইহা পর ভজন করার বালোকে লিয়ে কৃষ্ণ তত্ত্ব ক্যা হ্যাঁ রাধা তত্ত্ব ক্যা হ্যাঁ উনমে প্রেম ক্যা তত্ত্ব হ্যাঁ সব বতলা রে বড়ে বড়ে তত্ত্ববিদো কো ইয়ে চিজে সমঝ মে নেই আতি হ্যাঁ সাধারণ লোক কি তো বাত ক্যা ইহা পর রাধিকা জি কে সম্বন্ধ মে বতলা রে রাধিকা হ্যাঁ ক্যা হম লোক দু তিন দিন সে চার দিন সে इस विषय पर विचार कर रहे हैं। राधा या प्रणय महिमा इत्यादि श्लोक के द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसकी व्याख्या कर रहे हैं। राधिका कृष्ण के प्रणय की विकार है, उसी प्रणय के द्वारा प्रणय माने प्रेम, प्रेम की ऊंची दशा, उसी से एक तत्व ही था पहले, उसे राधा और कृष्ण तत्व के रूप में प्रकाशित हुआ और फिर वो एक हो गया। दो रूपों में वो नित्य राधा और कृष्ण है, उनको हलादरी शक्ति दो रूपों में प्रकट करती है और फिर वही दोनों मिलकर के रसराज महाभाव के रूप में एक होकर के चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। आगे कौन हुआ पीछे कौन हुआ इसका विचार नहीं, ये जगत में ही विचार है। ये बड़ा है ये छोटा है, काल की दृष्टि से जो पहले आया वो बड़ा, पीछे आया छोटा, ये विचार अपराकृत जगत में गोलोक वृंदावन में वैकुंठ में नहीं है। वहां पर राधा कृष्ण भी नित्य हैं, हलादिनी शक्ति भी नित्य है और गौरचंद्र भी नित्य हैं, नारायण भी नित्य हैं, राम भी नित्य हैं, सभी अवतार भी नित्य हैं और वहां पर जितने रहने वाले सेवा करने वाले उनके परिकर जीव इत्यादि हैं वो सभी। इसलिए भगवान पहले थे अकेले और उन्होंने ये सब पीछे से बनाया ऐसा काल का वहां पर कोई विचार नहीं है। जब से कृष्ण है उनकी शक्ति है, तब से राधा जी हैं, तब से गोप गोपी नंद बाबा इत्यादि सखा लोग हैं, तभी से वृंदावन है और तभी से ये असंख्य कोटि जीव हैं। इसलिए इन चीजों को भजन के द्वारा समझने की चेष्टा करनी चाहिए। जिसका भजन जितना ही उन्नत होगा उनका हृदय जागतिक विकारों से उतना ही निर्मल होने पर भजन के बल से उस चीज को समझेंगे। तर्क वितर्क मत करो, इसमें कोई भी तर्क इसमें नहीं चलेगा, इससे और हम उलझ जाएंगे। इसलिए शास्त्र में भगवान के मुख से जो कहे गए शास्त्र हैं, भागवत गीता इत्यादि, उसको मां के समान समझ करके, हितैषी समझ करके उनकी बातों को मान करके चल रहे हैं। गुरु को पिता रूप में, वैष्णव को पिता के रूप में समझ करके उनकी बातों को मान करके इसमें चलना चाहिए, अन्यथा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। कुछ लोग भगवान का भजन करने पर भी कुछ जागतिक कपटताएं होती हैं, जिसको कामनाएं कहते हैं, अपने सुख दुख की कामना। ये जब तक रहेगी, यहां तक कि मुक्ति की कामना भी रहेगी, तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए इनको दूर करके वैष्णव का संग करते करते करते, उनकी सेवा करते करते, ये हृदय में अपने आप अद्भुत होगी, तब उसको हम कुछ कुछ जान सकते हैं, पूर्ण रूप से जानना संभव कर रहे। जानने की चेष्टा भी मत करो, ज्ञाने प्रयास मुद्पाशन मंत्र। कृष्ण भगवान है, उनकी इतनी महिमाएं हैं, कैसे उनको आजीव उत्पन्न हुआ, कैसे ये संसार चक्र चल रहा है, कैसे वहां पर क्या क्या चीज होती होंगी, एक साथ में कृष्ण हजार बन गए, वो बालक बन गए, ये कैसे ये सब चीजें हुई, इसको अधिक नहीं। भगवान की लीला कथाओं को गुरु वर्गों से सुनो, शुद्ध रूप में जो वैष्णव हो, और अपने आप ये सब चीजें समझ में आएंगी। कृष्ण सच्चिदानंद है, पूर्ण कृष्ण स्वरूप, कृष्ण का स्वरूप पूर्ण है। क्या तात्पर्य भाई, चित्त इधर उधर देगा तो कुछ समझ में नहीं आए, सब छोड़ करके इधर देखो। कृष्ण में सच्चित आनंद तीन शक्तियां हैं। ऐसा कहने से कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। वो शक्तियां ही कृष्ण है या सब कृष्ण ही शक्ति है, दोनों में भेद नहीं है, कोई शक्ति अलग से है और उनमें नहीं, इसलिए उसको स्वरूपानुबंधी शक्ति कहा गया, इसलिए उसका नाम स्वरूप शक्ति है। स्वरूप में रहने पर अमूर्त और वही विलास के लिए अलग से जबकि प्रकटित होती है तो उसको राधा गोपी इत्यादि शक्ति कहा जाता है, उसको मूर्त कहते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए बतला रहे हैं, कृष्ण में प्रधान रूप में तीन शक्तियां हैं, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। चित शक्ति माने स्वरूप, स्वरूप जिसके द्वारा वैकुंठ जगत, वृंदावन धाम इत्यादि ये सब धाम और वहां के परिकरों का शरीर प्रकटित होता है। यहां पर एक और भी चीज सुन लो, शास्त्रों में भी ऐसा लिखा हुआ मिलता है, भगवान विशुद्ध सत्व है, कहीं कहीं पर शुद्ध सत्व का भी शब्द मिलता है, शुद्ध सत्व, कहीं पर सत्य मिलता है, कहीं पर मिश्र सत्य मिलता है। क्या चीज है विशुद्ध सत्य में और शुद्ध सत्य में क्या प्रभेद है, अंतर है? शुद्ध सत्य में और मिश्र सत्य में क्या अंतर है? सत्य कहते हैं किसको? इन चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जब हम समझने जा रहे हैं तो इसी का नाम है मध्यम अधिकार। कनिष्ठ अधिकार में ये सब प्रश्न नहीं उठेंगे, और उत्तम अधिकार वो है जबकि ये सब जान लेने के बाद में भावावस्था आने के बाद में प्रेम वहां पर रहता है, उसमें भी इसकी जरूरत नहीं होती। प्रेमावस्था में उस समय अपने आप स्वतः ये सब चीजें जीव के हृदय में रखती है, अलग से जानने की जरूरत नहीं होती। विशुद्ध सत्व किसको कहते हैं, इसको यहां पर प्रभुपाद जी ने अनुभाष्य में जीव गोस्वामी के विचारों को लेकर के बतलाया। शुद्ध सत्व किसे कहते हैं यह भी बतलाया गया है। पहले यह बतलाया गया है लादनी का सार है प्रेम, संधिनी का सार प्रेम है शुद्ध सत्व, और जब तीनों का सार है तो इसको कहते हैं विशुद्ध सत्व। इसलिए भगवान विशुद्ध सत्व हैं और उनमें एक ऐसी प्रवृत्ति है, एक ऐसी प्रवृत्ति है, स्वरूप शक्ति की एक ऐसी वृत्ति है जिससे अपने स्वरूप को कृष्ण, अपने शिव विग्रह को, स्वरूप शक्ति के विग्रह को और स्वरूप शक्ति को और अपने परिकरों को प्रकाशित करते हैं, उस वृत्ति का नाम विशुद्ध सत्व है। फिर से समझो, नहीं तो शुद्ध सत्व और विशुद्ध सत्व में एकाकार करने में समझ में नहीं आएगा। क्या जरूरत है समझने की? नहीं समझेगा तो प्रेम नहीं समझेगा, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं होगा। तो सबको यह समझना होगा, जरूर किसी न किसी जन्म में समझ करके ही आगे बढ़ना होगा। आज समझो और कल समझो चाहे बरसों, किंतु जरूर समझना पड़ेगा तभी यह प्रेम होगा। नहीं तो हम लोग काम को, जो जगत में प्रचलित है काम, इसी को प्रेम मान लेंगे, बस यही गड़बड़ी। इसलिए समझना पड़ेगा जरूर भक्ति स्वरूपता क्या, यह भी इसको समझना पड़ेगा। भगवत तत्व की इसको कहते हैं यह भी समझना पड़ेगा। ये टेढ़ी खीर है, खीर है किंतु टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर माने क्या, समझना टेढ़ी खीर है, मैंने कष्ट साध्य है, सबको नहीं समझ में आएगा। जिनको पूर्व जन्म जन्मों की सुकृति का संस्कार है और इस जन्म में नवीन भी वैष्णवों के संग से जो संस्कार उदित हो रहे हैं, वो दोनों मिलकर के तब इस चीज में प्रवेश कर रहे हैं भाई। ऐसा नहीं कि हलवा बना दिया प्रेमानंद प्रभु जी ने और ले करके लपक करके सब खा लिया, ये ऐसी चीज नहीं है। थोड़ी सी वैष्णव सेवा करने में कतराते हैं, थोड़ी सी वैष्णव सेवा में यदि किसी वैष्णव ने शासन कर दिया तो उनको सदा के लिए वाक्यालाप और सेवा भी बंद कर दी गई। इतना सहज वैष्णव धर्म रहता तो फिर सभी लोग वैष्णव हो जाते। इसलिए वैष्णव सेवा की छड़िया छड़िया वैष्णव सेवा निस्तार के आए थे भाई। वैष्णव सेवा को मत भूल लो, माता से भी अधिक ममता संपन्न वैष्णव होते हैं, गुरु होता है। इसलिए थोड़े में मन को खराब मत करना, ब्रह्मा के लिए जो दुर्लभ प्रेम है उसको देने के लिए ये श्लोक चेष्टा कर रहे हैं, जन्म जन्मांतरों के लिए भी नहीं। जब कहें सूली पर चढ़ जाओ तो सूली पर चढ़ने के लिए हम लोग तैयार रहे, जैसे प्रहलाद महाराज जी के लिए हुआ, तब तो उनको भक्ति मिली कि ऐसे ही मिल गई। इसलिए जागतिक चीजों के लेने देने से भी नहीं होगी, मन की क्रिया से भी भक्ति नहीं मिलेगी। ये मिलेगी कैसे, आत्मा की क्रिया से। क्योंकि आत्मा की क्रिया प्रकाशित कौन कर रहा, कौन करेगा, गुरु और वैष्णव। इसीलिए इनके प्रति जन्म जन्मांतर कारिणी होने से ही तब वो यदि भक्ति देवी प्रसन्न होकर के अपने आप रियलाइज करा देता है। इसलिए इसको कहते हैं स्वतः ज्ञान, स्वतः प्रभाव युक्त है। जैसे सूर्य है और एक प्रदीप है, लाख प्रदीपों के द्वारा सूर्य को हम नहीं देख सकते अंधकार में, और एक सूर्य होने पर इन प्रदीपों की कोई आवश्यकता नहीं, सूर्य को भी देखेगा अपने को भी देखेगा दूसरों को भी देखेगा। और सूर्य नहीं है, एक लैंप के जरिए हम कुछ लोगों को देखेंगे, सबको नहीं देख सकते, इसके अंदर भी नहीं देख सकते, आंख को नहीं देख सकते, आंख आंख नहीं देख सकते, पीछे की तरफ में दर्पण से भी नहीं देख सकते। इसलिए इन चीजों को जानने के लिए ऐसे ही सेवा वृत्ति में जीवन चाहिए, तब हम लोग इसको समझेंगे। राधनी कराए कृष्ण आनंदास्पादन, सर्व शक्ति की एक वृत्ति, तीन वृत्तियां बतलाया गया, संधनी संबित और धारण। जब इस उसी को बतला रहे हैं, जब तीनों शक्तियों में लादनी प्राधान्य होता है तो उसके द्वारा कृष्ण आनंद उपभोग करते हैं, दूसरों को देते हैं। जब इन तीनों शक्तियों में संबित का प्राधान्य होता है तो अपने को जनाते हैं दूसरों को, दूसरों को जनाते हैं अपने को जानते हैं। और जिस समय में उनके अंदर में तीनों शक्तियों में जब संधिनी का प्राधान्य होता है तो उसके द्वारा अपने स्वरूप को दूसरों को दिखलाते हैं, अपने स्वरूप को भी धारण करते हैं उसी शक्ति के माध्यम से, परिकरों के भी स्वरूपों को धारण करते हैं। जब तीनों एक साथ में रहते हैं, तीनों एक साथ में सुंदर रूप में प्रज्वलित रूप में प्रज्वलित रूप में प्रकाशित हों, सचित आनंद, उस समय भगवान की शिव मूर्ति होती है, वही विशुद्ध सत्व है। अब क्या समझा, समझो, चैतन्य चैतन्य से पीछे से ये सब चीजों को लेकर के विचार करना। जब तीनों शक्तियां प्रधान रूप में रहें, उस समय में कब कृष्ण विग्रह है वो, इसलिए कृष्ण विग्रह कैसा है, सचित, उसी में उस समय में तीनों चीजें, जिस समय जिस वृत्ति के द्वारा तीनों चीजों की उपलब्धि उनको होती है और दूसरों को उपलब्धि कराते हैं, उस वृत्ति का नाम है विशुद्ध सत्व। उसमें से जब संधिनी का प्रकाश होता है अधिक, उसके द्वारा अपने माता पिता परिकर धाम वैकुंठ सबको प्रकाशित करते हैं, ये संधिनी का सार है। बलदेव प्रभु जी के रूप में समझो, श्रीमती राधिका के रूप में, अधिकांश रूप में बलदेव प्रभु जी को ही संधिनी का अधिष्ठात्री देवता बतलाया गया, उसमें बलदेव जी की शक्ति का प्रधान रहता है। जब अपनी उस चैत्य की वृत्ति के द्वारा स्वयं आनंद का उपभोग करते हैं और उसकी कुछ आंशिक वृत्ति को उसी स्वरूप शक्ति के द्वारा प्रक्षेप करते हैं, निक्षेप करते हैं, कहां, जीवों के हृदय में, तो वही संबित और हलादनी का साथ भक्ति के रूप में होकर के वही कृष्ण को आनंदित मत कराता है। यह कौन कराता है, श्रीमती राधिका जी कराती है। इसलिए इन चीजों को अच्छी तरह से समझ, अब आगे बतलाएंगे। अब ये सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण का सत्व, ये विशुद्ध सत्व है, कौन, कृष्ण का शिव विग्रह, बंसी बजाने वाले जो कृष्ण हैं, रास क्रीड़ा इत्यादि करने वाले हैं, जो सोदा के जो पुत्र हैं, सखाओं के जो सखा हैं, सुदाम सुबल इत्यादि के, ये सच्चिदानंद पूर्ण विशुद्ध सत्व है। अपनी जिस वृत्ति के द्वारा इन चीजों का उपभोग करते हैं उसी का नाम है विशुद्ध सत्व। सत्तम विशुद्धम वसुदेव शक्ति, वसुदेव माने क्या, वसुदेव, वसु माने क्या, निवास करना, जहां पर ऐसे सच्चिदानंद में कृष्ण का निवास होता है उसको वसु अथवा सत्व कहते हैं, वही वसुदेव जी हैं। और जो वास करने वाले हैं वो हैं वासुदेवस्मय, यही विशुद्ध सत्व है। यहां बतला रहे हैं संधि सार अंश शुद्ध सत्व नाम, तीनों का सार बतलाया ना कृष्ण के विग्रह को, वो क्या बतलाया? विशुद्ध सत्व। अब एक एक को बतला रहे हैं, संधिनी सार अंश शुद्ध सत्व नाम, संधिनी का शुद्ध सार जो है उसको कहते हैं शुद्ध सत्व। भगवान में सत्ता कहां है? कहां पे विश्राम, भगवान की सत्ता तो भगवान का उसकी विग्रह उसी में निवास करता है, विश्राम करता है, इसलिए जहां पर उनका विश्राम होता है सबको वसुदेव कहते हैं, और उनमें जो वास करते हैं उनको कहते हैं वासुदेव। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं सत्ता विस्तार करने वाली भगवान की सर्व शक्ति की जो वृत्ति संघनी शक्ति है उसका सार अंश का नाम शुद्ध सत्व। सत्व माने क्या? एक होता है सत्ता को से सत्व, जिसको हम देखते हैं सुनते हैं रियलाइज करते हैं, आंखों से देखते हैं हाथों से ग्रहण करते हैं जिस चीज को, इसको कहते हैं सत्ता, जिसकी कुछ क्रिया होती है। इसलिए ये चीज जिस चीज को प्रकाशित करती है, माता पिता भाई बंधु धाम आसन बसन मुकुट बंसी कृष्ण के सभी चीजें वृंदावन धाम इत्यादि, ये सब शुद्ध सत्व का है। सत्व दो प्रकार के होते हैं, मिश्र सत्व और शुद्ध सत्व। वस्तु की सत्ता का नाम ही सत्व है, जिसमें नाम रूप गुण क्रिया हो उसको कहते हैं सत्ता। जैसे ये क्या चीज है? हाथ, इसका नाम हुआ हाथ। गुण क्या है? कोई चीज पकड़ सकते हैं, गर्म है ठंडा है कठिन है कोमल है, ये सब चीजों को बतला देगा, किंतु सुगंधित है ये नहीं बतलाएगा, वस्तु को देखेगा नहीं। इसलिए इसमें नाम रूप और गुण क्या है ऐसा भी दे सकते हैं, बड़े प्यार से थोड़ी पकड़ भी सकते हैं, प्रेम को क्रोध को समस्त भावनाओं को ये कर सकता है, इसका गुण भी है क्रिया भी है। खा लो मार दो किसी को प्यार करो, ये सब इसके अंदर में क्रियाएं हैं। इसलिए वस्तु ये माई के एक वस्तु है, ये वस्तु कौन सा है? जड़ वस्तु है, ये सब जड़ वस्तु है, सत्ता है जी, इसकी सत्ता है भगवान, उनकी सत्ता है भगवान की धाम की सत्ता है, इसलिए ये हुआ एक शुद्ध सत्व और एक मिश्र सत्व मिला हुआ है। वस्तु सत्ता का नाम ही सत्व है, आया समझ में? सत्व किसको कहते हैं? वस्तु के वस्तु की सत्ता को सत्व कहते हैं। संधिनी क्रिया के बिना किसी वस्तु की सत्ता नहीं हो सकती, शक्ति की जरूर उसमें क्रिया रहेगी। भगवान की सत्ता प्रकाश, भगवान का सत्ता प्रकाश भी इस संधिनी का ही कार्य है। भगवान का रूप है कहां से आया? इस सत्ता से, किंतु गुण जो आनंद और जो भावनाएं और ज्ञान है ये कहां से? ये सत्ता से नहीं, वो संबित और लाभिक से, बल्कि कहो जी ये तीनों चीजें ही भगवत स्वरूप हैं, अथवा भगवान ही ये तीनों स्वरूप हैं, इनकी शक्ति उनमें अभिन्न है। भिन्न भी नहीं कहा जा सकता अभिन्न, किंतु हां अभिन्न कहा जा सकता है। ये सब दार्शनिक विचार है, दार्शनिक विचार में भी कुछ उतरना पड़ेगा। तो शुद्ध चित जो तत्व है वैकुंठ है, उसके ऊपर बोलो वृंदावन धाम में जो शुद्ध विशुद्ध वो चित तत्व है, संधिनी की जो क्रिया है उसी का नाम शुद्ध सत्व है। अतः धाम को प्रकाश किया, कृष्ण के शरीर को, परकरों के शरीर को, वहां पर पेड़ पौधे इत्यादि जो वृंदावन धाम में है, गोवर्धन इत्यादि जमुना और जितने माता पिता परकर इत्यादि हैं, ये शुद्ध सप्त की परिणति है। ये शक्ति की परिणति क्या है जी, और जड़ जगत की परिणति ये जड़ विश्व है, ऐसे शुद्ध सप्त की परिणति ये लोग हैं। भगवान के माता पिता स्थान, गृह सज्जा और आसन आदि कृष्ण के की शुद्ध, कृष्ण का शुद्ध सत्व का विकार। विकार माने क्या, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना राधा कृष्ण प्रणय विकृति, विकार माने क्या, विकार माने दो चीज होता है, दूध विकृत होकर के दही बन गया, हम लोगों ने जितना जो कुछ खाया अच्छी चीजें विकृत होकर के क्या हो गई, इसी तरह से शरीर में गलने पर भी एक विकार होता है। यहां पर यह तात्पर्य नहीं, यहां पर विकार का तात्पर्य क्या है, प्रभु स्थिति, चरम उसकी स्थिति, अत्यंत घनीभूत अवस्था, उत्तम घनीभूत अवस्था का नाम यहां पर विकार है। वही विकार हाव भाव हेला अत्तर तरह के रूप में, सात्विक व्यभिचारी के रूप में, अनुभाव के रूप में, ये सब कभी एक साथ कभी बहुत साथ कृष्ण में और उनके परिकरों में देखा जाता है। और भगवान के माता पिता स्थान गृह सज्जा आसन इत्यादि कृष्ण के शुद्ध सत्व का विकार समझो, अर्थात परिणति अथवा घन चीज है। प्रेम जब तरल, एक तरल होता है, प्रेम एक अर्ध तरल होता है, प्रेम फिर और घनीभूत होता है, और घनीभूत होता है, समझ लो पानी तरल है। अभी कहीं देखा एक स्कूल में एक दरिद्र लड़का एडमिशन लेना चाहता है, कहानी एक है, तो वो एडमिशन लेने जाके, तो पैसा है नहीं, आजकल स्कूलों में अनाप शनाप रुपए खर्च होते हैं, अरे तो आप दो चार हजार, पांच अच्छे स्कूल है तो 5,000 10,000 20,000 40,000 दीजिए डोनेशन, और महीना कितना 500-700 हजार रुपए महीने बोर्डिंग में रहे। असाधारण यहां पर कुकुरमुत्ते स्कूल खुले हैं ना सब, कुकुरमुत्ता स्कूल जानते हैं, ये सब क्या स्कूल है सर, पेपर में दिया था, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैंने वो एक सफेद बरसात में छोटे छोटे छतरियां हो जाती है ना, जहां तहां पैदा हो जाती है, जब विशेष करके गोबर रहे, जहां तहां स्कूल खुल गए हैं, बेसिक या क्या वो अमरनाथ और मानपेशल, इसमें साधारण गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को, यदि अंग्रेजी है तो और कोई बात ही नहीं, मीडियम। तो इस तरह से ये शिक्षा बहुत अत्यंत बहुत बेशकीमती हो गई ना, तो मैं किस चीज के लिए कह रहा था, हाँ गरीब है तो वो ओपन नहीं पाता था, स्कूल पासवी में था उसका, माता पिता भी मर गए हैं, तो वो कैसे पढ़े, एडमिशन तो हो नहीं रहा है, वो क्या करता, किसी प्रकार से ये बच्चे स्कूल से जब जाते तो उनसे कुछ थोड़ा सा समझ लेता और खिड़की के पास में खड़े होकर के चुपचाप और देखता रहता और सुनता रहता, उसी से वो पढ़ता, इस प्रकार से लगन के साथ में वो पढ़ता। एक दिन जाड़े का दिन, पहाड़ी जगह और वहां पर थोड़ा थोड़ा बर्फ पड़ता है, कैसे बर्फ पड़ता है, रुई की भांति ऊपर से, मालूम नहीं होगा कहीं चोट नहीं आएगी, मालूम भी नहीं होगा, ठंड तो पड़ेगी, और वो बच्चा पढ़ने में सुनने में क्लास हो रहा है, इतना तल्लीन हो गया जो पता ही नहीं कब वो बर्फ में जम करके बर्फ ही बन गया। दूसरे दिन सवेरे जब स्कूल खुला
तो बोले भाई खिड़की से रोशनी क्यों नहीं आ रही है, बंद क्यों? स्कूल से बाहर आकर के खिड़की पर जाकर के देखा, अरे ये तो जम करके बर्फ पड़ा है, बना हुआ है। जल्दी से उसे निकाला, उसमें से ताप इत्यादि दिया, डॉक्टर को बुलाया, मास्टरों की कुछ दया हो गई और उसको फिर निकाल करके सही को देकर के फिर उसमें प्राण आ गए। फिर उसका स्कूल से माफ ऑफ कर दिया फीस तीस और स्कूल में ही रहा। हम केवल अपनी आंशिक उदाहरण के लिए इस चीज को लिया है, बर्फ जब पड़ती है पहले तो वो तरल जैसी होती है, मालूम नहीं होगा, और वही जब बर्फ पड़ करके कुछ देर के बाद में धीरे धीरे घनत्व तो प्राप्त होगी और दूसरे दिन तक ऐसा घनत्व तो होगी कोई भी चीज उसमें रहे सबको एकदम बर्फ जमा करके खत्म कर दे। प्रेम भी तरल अवस्था में अभी भावावस्था है सब, और कुछ घन हुआ तो प्रेम हुआ, ये और कुछ अधिक घनत्व तो प्राप्त हुआ तो स्नेह, इसके बाद में मान प्रणय राग अनुराग भाव, इसके बाद में महाभाव। भाव ही महाभाव है, प्रथम अवस्था को महाभाव और दूसरे को अधिरूह कहते हैं। ये सब भाव का एकदम घनत्व स्थिति है, जीव इसको स्पर्श कर सकता है किंतु पूरे रूप में ग्रहण नहीं करेगा, उसके आभास को, उसी को उन्नत उज्जवल रस कहते हैं। अधिरूढ़ अवस्था में गोपियों में केवल, तो वो कह रहे हैं यही कृष्ण में और उनके परिकरों में यह रहता है। कहीं कहीं पर ऐसा भी बतलाया गया है, जो शुद्ध स्वत्व बतलाया गया है वो संधनी का सार है, सत्ता का सार है, उसी के ऊपर में संपित और श्लाघनी दोनों मिल करके जब सार के रूप में प्रकटित होते हैं तो उसको शुद्ध सत्व कहते हैं। एक दिन हमने बतलाया था इस चीज को कि कुछ लोगों का विचार है कि जीव तत्व में, जीव स्वरूप में संधिनी संपित और श्लाघनी नहीं है, किंतु यह बात गलत है। जीव के स्वरूप के अनुसार में जितना वो अणु है उसी रूप में ये है। जीव के अंदर, भगवान के अंदर में संबित संधिनी और ह्लादिनी है, वो शुद्ध रूप में विशुद्ध रूप में, और जीव के हृदय में जब है तो वही ह्लादिनी कहलाती है ब्रह्मानंद, और संबित कहलाता है ब्रह्म ज्ञान, और संधिनी कहलाती है संधिनी जीव सत्ता अणु सत्व। वही संसार में भी ह्लादिनी और संबित और किंतु कुछ विकृत रूप में, यहां पर जीवों के हृदय में जो बद्ध जीव है उनके हृदय में या संसार के वस्तुओं में ह्लादिनी का विकृत भाव है, काम जड़ानंद जड़ीय विषय सुख, और संबित का क्या है जड़ ज्ञान विज्ञान आजकल जो हो रहा है ये सब है भौतिक ज्ञान, और संबित क्या है संधिनी उनका ये जड़ शरीर, इसलिए सभी में है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसका जैव धर्म में खूब सुंदर रूप में विचार किया है, जो जानना चाहेंगे इसको करेंगे, नहीं तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कैसे जर हरे कृष्ण जर धर तो
वंशा कल्पति रूपश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
आमाभिरामो दरं राधा स्कंदनिवेशित जलभुजं ध्यायेदं भक्तिनायतराधता काम तरंग मध्ये कृपाण शरण प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंद। भगवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैताय नो विरहकर्तर्य जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतरिदं मुनिनां त्वयैवास्मि त्वयैवास्मि न जिगामि तया विना इति विज्ञानराधे तन्मे मां भजामि राधम् अरविन्दने स्मरामि राधम् मनुष्याभ्याम् ददामि राधम् करुणाभरद्रम् ततो मम नास्ति गतिर्नकार
अर्थात राग प्रेम माने यहां पर राग समझो राग का रस निर्जास आस्वाद है एक और राग मार्ग भक्ति कल्पे प्रचारण ये प्रचार की वस्तु है इस जगत में राग मार्ग और राग एक नहीं है ये पहले समझ लो अच्छी तरह से ये समझ में ही लोगों को नहीं आता राग और राग मार्ग एक नहीं है राग मार्ग माने क्या राग को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है वो राग और राग क्या है वही अनुराग उसका कृष्ण रसास्वादन करते हैं ब्रजलीला और महाप्रभु जी उसी को देने के लिए जिस मार्ग को देते हैं उसको कहते हैं राग दोनों एक नहीं शुद्धा भक्ति किसको कहते हैं शुद्धा भक्ति प्रभुपाद जी शुद्धा भक्ति माने
राग मार्ग की भक्ति को पाने के लिए साधन को अवलंबन किया था शुद्धा भक्ति
राजानुजा सेवा को ही लक्ष्य किया जाता है शुद्धा भक्ति शब्द राजानुजा सेवा के ही लक्ष्य पर पहले राजानुजा भक्ति ही अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम ये क्या चीज है रागानुगा है न वही है न क्या है दोनों है रागानुगा भी है और रागात्मिक भी है मुक्त प्रवृत्ति से रागात्मिक है और साधारण रूप में ये रागानुगा ये सिद्धा भक्ति बैठी नहीं बैठी से कृष्णानुशीलनम अनुकूल लेना ये यशोदा जी का है सखाओं का है गोपियों का है इसलिए ये कदापि ऐसा नहीं कल हमने बतलाया था कि कौन किसका है विशुद्ध सत्व शुद्ध सत्व सत्व और विद्ध सत्व विद्ध चार शब्द हमने बतलाए सबसे पहला विशुद्ध सत्व इसके बाद में शुद्ध सत्व फिर सत्व और फिर मिश्र सत्व उस मिश्र सत्व को विद्ध सत्व कहते हैं ये जीव गोस्वामी जी बतला रहे हैं
जया सत्ता दधाति धारयति च सर्वदेश काल द्रव्यादि प्राप्त करी संधिनी। तथा लाभ तापो तापो अपि जया लाभ रूपो अपि जया संबित उत्कर्ष रूपया तं लाभ संबित इति संवेदयति। सा ह्लादिनी इति विवेचनीय तद एव अब उसी को बतला रहे हैं। मूल का एक पराशक्ति है, पराशक्ति त्रिरूप त्रिरूपत्व सिद्ध हुआ। पराशक्ति जो है तीन रूपों में, ह्लादिनी संबित संधिन तीन रूपों में है। वह स्वतः प्रकाश लक्षणमय वो जो स्वरूप शक्ति की पराशक्ति है स्वतः प्रकाश लक्षण में ये वृत्ति विशेष के द्वारा भगवान स्वयं तार स्वरूप शक्ति अथवा चित वैशिष्ट आदि का आविर्भाव होता है, वही विशुद्ध सत्व है। अति तरह से समझो स्वप्रकाश लक्षण में सूर्य को मान लो इस जगत में स्वप्रकाश में, सूर्य दूसरों के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, दूसरों के द्वारा दिखलाया नहीं जाता है। रोशनी दूसरी दीप की, महादीप की, टॉर्च लाइट की या और किसी शक्ति के सहारे प्रकाश के सहारे सूर्य को नहीं दिखाई। सूर्य की अपनी स्वयं शक्ति है, जहीं उदित होता है उसकी शक्ति उससे विकीर्ण होती है और उस प्रकाश में सूर्य को अपने को दूसरों को सभी को दिखा जाता, इसलिए इनको स्वप्रकाशमय कहा जाता है। किंतु ये भी स्वप्रकाशमय नहीं है, भगवान की शक्ति के द्वारा प्रकाशित होते हैं सूर्य। सवितुर्वरेण्यम हरगह देवस्य, सूर्य में अपनी शक्ति नहीं है इसलिए स्वप्रकाश कहने से किसको बोध होता है? कृष्ण और कृष्ण की शक्ति। तो स्वप्रकाश लक्षण में जिस वृत्ति के द्वारा भगवान के अंदर में, स्वयं भगवान के अंदर में एक वृत्ति है, उसी को स्वरूप शक्ति कहती है। उस स्वरूप शक्ति में तीन वृत्तियां हैं, ह्लादिनी संबित और संधिनी। उसमें से बतला रहे हैं स्वतः प्रकाश लक्षण में जिस वृत्ति विशेष, वृत्ति का विशेष चीज जैसे बतला गया सांद्रानंद आत्मा विशेष आत्मा, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा माने क्या? शुद्ध सत्व है संधिनी, है ना? शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, उसका विशेष आत्मा यह ह्लादिनी और संबित का साथ, ये विशेष उसका आत्मा है। किसका? केवल संधिनी है और उस पर ह्लादिनी और संबित का भाव न उदित हो तो आनंद नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए कृष्ण के अंदर में संधिनी के ऊपर में संबित और ह्लादिनी का सार ये विशेष है। वही जगत में भजन करते करते हम लोगों के हृदय में आता है। अब स्वतः प्रकाश लक्षण में जिस वृत्ति विशेष के तरफ, वृत्ति विशेष माने क्या? वृत्ति की विशेष कोई चीज है, ऐसी कोई विशेष वृत्ति है, सर्व शक्ति है, तीन वृत्ति, उसमें से वृत्ति विशेष एक कोई विशेष व्यक्ति के द्वारा भगवान स्वयं उनकी स्वरूप शक्ति और उनका चित वैशिष्ट। चित वैशिष्ट माने क्या है? चित वैशिष्ट होता है गोपियां उनकी चित वैशिष्ट है, सखा लोग उनके चित वैशिष्ट है। ये तीन चीजें आविर्भाव होता है, उनको विशुद्ध सत्व कहते हैं। वह अन्य निरपेक्ष दूसरों समस्त शक्तियों से निरपेक्ष है और भगवान भगवत प्रकाश रूप है, भगवान को प्रकाश करता है। कृष्ण जो सच्चिदानंदमय है उनका शिव विग्रह ये विशेष शुद्ध विशेष तत्व है। राधा जी जो है क्या है? उनकी स्वरूप शक्ति है राधा जी, जो ऋषि अंग इत्यादि है वो, ये सब चीजें। और चित वैशिष्ट उनकी जो जितनी लीलाएं हैं रास इत्यादि, ये सब चित वैशिष्ट है। इनको कौन प्रकाश करता है? वो जो वृत्ति करती है उस वृत्ति का नाम विशुद्ध सत्व है। एवं माया स्पर्श, अच्छा स्वयं अनुभव, अन्य को अनुभव कराने की वृत्ति द्वय, अनुभव करना दूसरों को अनुभव कराना, उसमें वर्तमान रहती है, इसलिए संबित भी है, संबित भी है और विशेष वृत्ति भी है। माया स्पर्श नहीं करना ही उसकी विशुद्धता है, शुद्ध विशुद्ध क्या विशुद्ध सत्ता ना, विशुद्ध विशुद्ध क्यों कहा गया? सत्व है असल में स्वरूप लक्षण,
विशुद्धता का तटस्थ लक्षण, उनकी और व्यक्तियों से विशुद्धता ही ये विशुद्ध है। विशुद्ध एक हुआ शुद्ध सत्व, एक हुआ विश्व सत्व, एक हुआ विशुद्ध, तो ये विशुद्ध सत्व सबने श्रेष्ठ है। एवं ये विशुद्ध सत्व वही थे, विशुद्ध सत्व से ही वैकुंठ नामक धाम प्रकाश पाता है, वो है विशुद्ध सत्व वैकुंठ। और भगवान के जितने भी स्वरूप इत्यादि हैं सब इस प्रकाश स्वरूप है। इस विशुद्ध सत्व से स्वतः प्रकाश लक्षण में भगवत स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष को कहा जाता है, समझा जाता है। स्वतः प्रकाश लक्षण में भगवत स्वरूप शक्ति की एक वृत्ति है विशुद्ध शक्ति। ये शुद्ध तत्व प्रकाश शक्ति वृत्ति होने के कारण, स्वरूप शक्ति की वृत्ति होने के कारण यह स्वरूप सत्यात्मक, स्वरूप सत्यात्मक, स्वरूप शक्ति से,
स्वरूप शक्ति से आत्मपने प्राण से आत्मा आत्मा जो विशुद्ध सत्व है संबंधी, उसमें जब संधिनी का प्राधान्य होता है उसमें ये तीनों है, तीनों तीनों में से संधिनी का अंश जब प्रधान होता है तो आधार शक्ति होती है, आधार शक्ति और सब प्रकार की सत्ताओं को प्रकाश करती है। और संबित इसमें यदि प्रधान हो जाए आत्मज्ञान आत्मविद्या ज्ञान भाव ये सब प्रकाशित होता है। और ह्लादिनी शक्ति उसमें यदि प्रधान हो जाता है तो प्रेमा भक्ति होती है, यही प्रेमा भक्ति कृष्ण को आनंद प्रदान करती है और जीवों को आंशिक रूप में आनंद प्रदान करती है। संघिनी सार अंश शुद्ध सत्पना केवल उसमें से जो संघिनी है सत्ता को प्रकाश करने वाली उसका नाम है शुद्ध सत्व। इसलिए जीव स्वरूप में जो ऊपर से आती है रागात्मक भक्तों के हृदय से जो वृत्ति वो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा है तो वो शुद्ध सत्व ही नहीं आया संबंध में। शुद्ध सत्व होने से केवल उसका सत्ता ही होता किंतु विशेष आत्मा में आ गया क्या लाजनी और समृद्धि मिल करके उसमें आ गई तब उसमें तीनों चीज हुआ। संघिनी सत्ता का माने आधार है आधार शक्ति बदला है और उस पर उसकी विशेष आत्मा जैसे शरीर की में आत्मा ही प्राण है ऐसे ही उस संघिनी का जो सार है उसकी जो आत्मा है वो संबित और राजनी का सार जब उसमें मिल करके जब यहां पर प्रकाशित होता है तो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा वो होता है। ये भाव हम लोग के अंदर में पात्रता है और इसमें तीनों चीज ही है क्योंकि ये पोटेंसी तब तक कोई कार्य नहीं करती जब तक ही वो जो शुद्ध सत्व वाला जो रगात्मिक भक्तों वाला बहुत विशेष शक्तिशाली कनेक्शन है जो नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं होगा। लाइट अपने आप नहीं जलेगी
जलने का पोटेंसी है
पोटेंसी है किंतु वहां वाली शक्ति जब इसमें आएगी संबंध होगा तब जलेगी। इस रड को वो शक्ति नहीं जला सकती इससे बिजली को कनेक्शन कर दो तो जलेगा इसको हाथ पकड़ने से आदमी मरेगा जलेगी नहीं। इसलिए ऑर्गन उस लाइट में है ऑर्गन मैंने उपादान सब उसमें है। इमली के बीज में इमली के पेड़ होने की पोटेंसी है आम के पेड़ में उसके गुठली में आम के होने की पोटेंसी है ये कोई बदल नहीं सकता। हम चाहें जो उसे दूसरा कुछ कर दें नष्ट हो सकते हैं हम नष्ट कर दें किंतु इसमें जो चीज है वही किंतु पानी हवा रोशनी की जरूरत है बिना उसके वो प्रतिफलित नहीं प्रकाशित नहीं। ऐसे जीव स्वरूप में शक्ति की पोटेंसी है सीप में मोती की पोटेंसी है अन्यथा स्वाति नक्षत्र का पानी होने से उसमें नहीं होता। कागज के ऊपर में स्वाति नक्षत्र का पानी पड़ जाने से मोती होगी लोहे के ऊपर में किसी पात्र के ऊपर में नहीं होगा इसलिए पोटेंसी है। अब कहते हैं संघिनी का सार अंश खूब धीरे धीरे समझो नहीं समझ में आया फिर से देखो पूछो। संघिनी सार अंश शुद्ध सत्पनाम भगवान है सत्ता है तहां पे विश्राम भगवान का सत्ता भगवान की सत्ता वहीं पर विश्राम कर भक्ते हृदय गोविंद विश्राम माने क्या भक्त का हृदय शुद्ध सत्व है। कौन सा भक्त साधारण जो हम लोग हैं ना हम लोग अंदर में विश्राम करेंगे भाई शुद्ध सत्व तो आना चाहिए ना ये सब नहीं आएगा शुद्ध सत्व वहां वाला जिनके अंदर में आ गया अंत तो भाव आ गया तब तो वहां पर विश्राम करें और नहीं तो भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत इसलिए भगवान वहां पर विश्राम करते हैं। सिद्धि मुक्ति कामी अभी देख करके विचार करो कि हमारे हृदय में क्या क्या है काम क्रोध मोह मात्सर्य इत्यादि अनर्थ अपराध इसके अतिरिक्त दूसरों का हित करने की प्रवृत्ति ये मेरे हैं ये अपने हैं है कि नहीं यदि है तो अभी नहीं विश्राम कर जब अपना पराया का भेदभाव कर बिट जाएगा। अभी हम गौड़ीय वैष्णव हैं हम उसके विरोधी हैं, इसके निंदार्क के या रामानंदी के और सबके विरोधी। तो ये क्या हुआ? प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप को कहा, जिनको अपने और पराये में भेद है, ये मेरा है ये वो दूसरा है, तब तक आई भगवत भक्ति नहीं, ये सब उपाधियां हैं ये मिट जाएंगे। जब अपराकृत ये सब चीज आएंगे, क्या कृष्ण ही मेरे हैं, तब तो फिर वो ठीक रहेगा। इसके नीचे में माई की ये सब चीज रहेगी, ये अपना है ये मेरा, हम जो कुछ करते हैं इस अपने और पराये पर निर्भर रह करते। दिल्ली से आप लोग आए, अपनों को लेकर के आए, ये अपनी पत्नी है, ये बेटी है, ये बेटा है, ये यहां पर हम लोग, ये मठ वाले अपने हैं, कोई गृहस्थ भक्त हैं, कोई दूसरा आ गया तो अभी आपके मठ के आने ही नहीं, हमारे मठ वाले नहीं, किसी से पूछा जाए वो आपके संप्रदाय, नहीं नहीं हमारे संप्रदाय के नहीं होते, तब तक अभी उपाधियां हैं। इन सब उपाधियों को छोड़कर तब भगवत भजन है। महाप्रभु के सामने में ऐसा कभी कोई प्रसंग नहीं आया, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, आया जहां गए सबको देखने से ही कृष्ण की स्मृति आई। ये उत्तम भागवतों का ये सब लक्षण है। उत्तम ये सब जो लिखा जा रहा है किसके लिए? उत्तम भागवतों के लिए, या उत्तम भागवत बनने का लोभ पैदा करने के लिए ये हो रहा है। संत निर्सार अंश शुद्ध सार, जहां पर सत्ताएं तीन प्रकार की हैं, एक चित्त सत्ता है, एक जीव सत्ता है और एक जड़ सत्ता है। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं इस जगत में, ये जड़ सत्ता है। जिसमें नाम रूप गुण क्रिया हो वो सत्ता है। ये बजेगा पीतल का है कि उनके साथ में सहयोग करता है, इसका नाम पीतल है, खानों में पाया जाता है, यह सब गुण और क्रियाएं। उसी तरह से जीव का भी नाम है, रूप है, गुण है, क्रिया है, तब तो उसकी सत्ता है। जीव कुछ है नहीं, वो केवल एक हवा जैसी चीज। अरे हवा भी मेरे नाम रूप गुण क्रिया है, इसलिए कोई भी ऐसी सत्ता नहीं है जिसमें नाम रूप गुण क्रिया न रहे। किंतु किसी में जड़ नाम रूप गुण क्रिया होता है और उपाधि युक्त होता है दूसरों से लेकर के, जैसे नाम है कमल नयन, दोनों आंख के अंधे और नाम रखा है कोई काली कलूठी लड़के, उसका नाम रखा गौरी, ये सब उपाधि युक्त नाम है। राधा जी ही गौरी है, ये क्या है? ये चित सत्ता का नाम है। इसलिए भगवान का भी नाम रूप गुण लीला ये सब है, उनकी सत्ता है, किंतु वो संपूर्ण चिन्ह है विशुद्ध सत्व। जीव की अणु सत्ता है, माया के द्वारा ढक सकता है। हम लोगों की बुद्धि, हम लोगों का नाम, हम लोगों का स्वरूप, हम लोगों की क्रिया, ये आत्मा संबंधी है क्षुद्र किंतु है चिन्मय, किंतु अभी माया के द्वारा। अच्छा, हम कहते बड़े बुद्धिमान हैं, क्या बुद्धिमान है? कुछ भी बुद्धि नहीं। कहते हैं बड़ा अभिमान रहता है जड़ बुद्धि के लिए। दो चार आदमियों को ठग लिया, बहुत बुद्धिमान है ना, ये ठगना ही तो बुद्धिमत्ता है। इस जगत में बुद्धिमत्ता है, भगवत भक्ति करना, ये जगत में बुद्धिमत्ताओं की शेष सीमा। कृष्ण तत्व को जानना, ये बुद्धिमत्ता है। इसलिए ये तीनों चीजों में है, संगीत संगनी लादनी जीव सत्ता में, भगवत सत्ता में और जड़ सत्ता में। इसीलिए कल बतला रहा था भगवान में लादनी शक्ति प्रेम कहलाती है, जीवों में ब्रह्मानंद और संसार में जड़ानंद। संबित शक्ति भगवत स्वरूप में भाव अथवा उसी का ट्रैक्शन तत्व ज्ञान इस जगत में उसी का ही, जीवों में ब्रह्म ज्ञान और जड़ जगत में भौतिक विज्ञान। अथवा संदिनी वहां पर संदिनी शुद्ध सत्व वहां रूप में है भगवान के स्वरूप में, और जीवों में अनुचित कृष्ण में विद्विचित, जीवों में अनुचित और संसार में संसार की वस्तुओं में जड़ सत्ता। ये जड़ सत्ता है तो ये संधनी का कार्य है, इसलिए तीनों ही गुण तीनों ही स्थितियों में ये विद्यमान है। इसलिए जीव में हलादिनी नहीं है, जीव में संदेही नहीं है, जीव में संविध नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। किंतु प्रेम को उत्पन्न करने वाली ये सब चीजें नहीं है खुद, इसको सहायता लेना पड़ेगा कहां से, उस सत्ता से। जब वो चीज इसमें मिलती है तब ये विकसित होता है, उसी को प्रेमा भक्ति करते। जो इसके लिए प्रयत्न नहीं करते, केवल बाहरी चीजों को भक्ति करते हैं, उनका अभी शुद्ध विचार नहीं। शुद्ध भक्ति ये है, इन चीजों को शुद्ध तत्व ज्ञान लाकर भगवान की कृति के लिए जो क्रियाएं होती हैं उनको शुद्धा भक्ति आता था, रागानुगा भक्ति, और अंत में रागानुगा ही रागात्मिक भक्ति होती है। तब ये सब उत्तमा भक्ति शुद्धा भक्ति ये सब चीज है। इसमें भगवत्ता भगवान की सत्ता भी शाम करती है। कैसे? प्रमद मदन नहीं नहीं मत मदन
दीक्षा
प्रमद बोलो। शांति का कृष्ण प्रचार सुखद वक्षर, राधा जी क्लांत हो गई है रास में, क्लांत होने के बाद में आकर के कृष्ण के वस्त्रक्षल पर पकड़ करके और विश्राम करने लगी। कभी कृष्ण ही क्लांत हो जाते हैं, और ये शुद्ध स्वरूप है ना, विशुद्ध सत्व स्वरूप श्रीमती राधिका, कृष्ण की सेवा का अतिरिक्त और कोई कामना नहीं है, इसलिए कृष्ण बड़े आराम के साथ में उनके वस्त्रक्षल पर शयन करते हैं और विश्राम करते हैं, उनकी क्लांति सब दूर हो जाती, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिसके अंदर में कोई भी भगवत प्रीति का अतिरिक्त कोई दूसरी कामना रहे अन्नाभिलाष, भगवान वहां पर विश्राम नहीं करते हैं। किस रूप में? परमात्मा के रूप में, साक्षी के रूप में है, विश्राम करने के लिए
कर
रहे। कैसे? एक मर्डर हुआ, मर्डर नहीं, जो उसके परिवार जन ने बड़े दुखी होकर के केस किया है, और दूसरे पक्ष ने मर्डर करके और ये बतलाने में लगा है, साबित करने में कि मैंने मर्डर नहीं किया, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। दोनों पक्ष वहां पर उपस्थित हुए हैं, एक व्यक्ति एक पक्ष वाला है रो रहा है, और दूसरा व्यक्ति गंभीर होकर के आर्गुमेंट करा रहा है वकील से, जब मैंने तो मर्डर किया नहीं, इससे कोई संबंध नहीं। और दूसरा व्यक्ति करता है कि नहीं इन्होंने ही मारा। जज साहब क्या करेंगे? जज साहब ने देखा कि इसे जरूर ये मर्डर किया है, क्योंकि कोई साक्षी नहीं मिल सकी, कोई प्रूव नहीं कर सके, कोई ऐसी गवाही नहीं मिली जिसके आधार पर ये कर सके और राय दे सके। क्या करेंगे? साक्षी के अभाव में छोड़ देना, छूट गया। जैसा सब समझ रहे हैं, जान रहे हैं, किंतु परिस्थिति अपने जान रहे हैं सब, किंतु परिस्थिति को अनुकूल नहीं कर रहे हैं, साक्षी वैसा नहीं कर रहे। थोड़ा सा भी यदि कोई कह दे किसी के मुंह से थोड़ा सा भी ऐसी बात है, झट उसको पकड़ करके और उसी के पॉइंट के ऊपर में अपना हजारों पॉइंट बना करके और उसको करते हैं। इसी तरह से किस पर विषय पर बतला रहा था, ये वहां पर विषाम नहीं करेंगे, वहां पर साक्षी है, कोई मर रहा है, जी रहा है, कर्मों के फल के भोग से नरक जा रहा है कोटि कोटि वर्षों के लिए, वैष्णव के प्रति अपराध कर रहा है, भगवान चाहे तो मना नहीं कर सकते, निषेध नहीं कर सकते, नहीं करेगा तो भी वो अब उसके प्रति को बदल सकते हैं, जड़ को चेतन, चेतन को जड़ कर दें, क्यों नहीं करते? लोग कहेंगे यहाँ पर महाराज जी बैठे हैं, कोई न्याय का विचार नहीं करते, हम ये सब लड़ रहे हैं और ये किसी का विचार ही नहीं करते हैं, इनके पास में कौन रहेगा? तो भगवान के पास में कैसे रहेंगे? वो तो वैसे ही साक्षी के रूप में विचार नहीं करते। गुरुदेव, गुरुदेव को हमने देखा है, दो आदमी लड़ रहे हैं जलती हुई लकड़ी लेकर के, एक दूसरे को मार रहे हैं और वो चुपचाप बैठ रहे हैं, और सब भाई ये क्या हो गया, देखो तो ये कुछ करने गए चुपचाप, थोड़ी देर के बाद में लड़ झगड़ करके लोगों ने शांत कराया, आए और बड़े तेवर में खड़े होकर के ये हमको ऐसा किया, वो कहते हमको ऐसा किया, हम इसका विचार करते हैं, नहीं तो मठ में नहीं रहेंगे। ये अच्छी बात है, आप लोग कोर्ट में चले जाइए, जज साहब के पास में, मजिस्ट्रेट के पास में, और वहां पर इसका फैसला हो जाए। मैं फैसला करने के लिए आया ही नहीं, हम तो यहां पर इसलिए आए कि हमारा अनुगत होकर के जो भजन करेगा उसको मैं राह दिखलाऊंगा, और नहीं तो आप जाइए वहां पर, यहां पर जजमेंट करने के लिए जागतिक हम नहीं आए, विचार करने के लिए नहीं आए। आजकल अधिकांश लोग ऐसा ही समझते हैं, गुरुदेव ने कोई जजमेंट नहीं किया, विचार नहीं किया, इनके यहां विचार ही नहीं है, क्या विचार करेंगे? इसके लिए थोड़े उनके लिए समय है, एक मिनट का समय उनको, जब हम ही लोगों को एक मिनट का समय नहीं ये सब विचार करने के लिए, तो गुरु की तो बात छोड़िए, दिन रात अपनी प्रभु की सेवा करेंगे, जगत का हित कार्य करेंगे, नहीं यही सब करेंगे, ये सब लोग लड़े कटे मरे अपने फलों को भोग करके फिर ये जन्म जन्मान कर ले। निर्देश दे दिया है, काम क्रोध लोभ मद को दूर करके चलो, दूसरों की निंदा मत करो, शुद्ध भक्ति का आचरण करो। महाप्रभु जी ने हमारे रूप सनातन में रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो मार्ग बतलाया है उसमें सबसे पहले बतलाया मनसो वेग क्रोध वेग जीवा वेग उदरो उपस्थ वेग एकान विदान जब सर्वाम अपमान पृथ्वी सशिष्या। ये सब वैष्णव के लक्षण है, प्रारंभ ही ये भी उपाधियां हैं, स्वरूप लक्षण नहीं है वैष्णवता का, वैष्णवता का स्वरूप लक्षण है कृष्णानुशीलन, ये ही है, और बाकी सब तटस्थ लक्षण है। गुरु जी ने कहा जैसे तुम तटस्थ लक्षण में मारामारी करो, ये कहा कहते ये जिसको सब छोड़ करके आओ तो मेरे पास में आओ, अभी देखेंगे विचार करेंगे ना तो देखेंगे वैष्णव में भी ऐसे वैष्णव जो उनसे बातचीत नहीं है, उनको 10 आदमी से बातचीत नहीं, उनको बाकी 15 आदमी से बातचीत, थोड़ी सी कोई बात होगी बस तू नक कर, ये सब वैष्णव होता है, ये सब तो बहुत पहले छोड़ देना। इसलिए भगवान की सत्ता कहां पर विश्राम होगी, जहां पर कोई भी चीज नहीं है, अनर्थ नहीं है, अपराध नहीं है, जहां पर शुद्ध भक्ति शुद्ध सत्व यहां पर प्रकाशित हो चुका है, उनके शुद्ध सत्व पर उधर भी शुद्ध सत्व वाला आ गया ना भाव, तब भगवान वहां पर विश्राम करेंगे। नहीं तो इस जगत में मारामारी लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं तो तत्वों का विचार लेकर के भी लड़ाई करेंगे और कुछ नहीं होगा। मठ मंदिर को लेकर के ही हम लोग मारामारी करेंगे, ये मठ हमारा है ये तुम्हारा है। इसलिए निरपेक्ष ना होइले भक्ति, ये याद रखना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए तब तो शुद्धा भक्ति आएगी, प्रेमा भक्ति में आएगी, और नहीं तो अभी औपाधिक भक्ति है। माता पिता स्थान गृह सैयासन आर ये सब कृष्ण शुद्ध सत्तेर विकार। वो जो संधनी को बतलाया शुद्ध सत्व, उसी शुद्ध सत्व का ये विकार कौन है? माता पिता स्थान गृह सैया आसन, ये सब कृष्ण के वंशी, कृष्ण का जितना व्यवहार की चीजें, वैकुंठ की जितनी भी चीजें हैं, नंद जशोदा वसुदेव देवकी नारायण नारायण तत्व इत्यादि सब जितने हैं, सब वैकुंठ की जितनी भी वस्तुएं हैं, वहां पर जो कुछ भी है, जैसे बंदर भालू वहां पर भी है ना, अयोध्या लोक में भी, वहां पर सब शुद्ध सत्व, वहां पर ये सब चीजें अशुद्ध सत्व नहीं। सत्तम विशुद्धम वसुदेव सद्वितम तदीयते यत्र कुमान वापृत सत्ते तस्मिन् भगवान वासुदेवो ह्यदक्ष जो मे मनसा विधीयते। बड़े जोर की सभा लगी हुई है कहां, हिमालय में, वहां पर जितने देवर्षि महर्षि ब्रह्मा शंकर सब लोग उपस्थित हैं, लाखों लोग वहां पर एकत्रित। अब उसी समय चमचमाता हुआ मुकुट पहना हुआ प्रजापति दक्ष प्रजापति जी, जिनकी बेटी का नाम सता है, सती उमा नहीं सती, उनकी 27 या कितनी लड़कियां थी, और उन्होंने बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को उन्होंने शादी दी थी। शंकर से सबसे छोटी परम सुंदरी सबसे रूपवती और गुणवती अपनी प्यारी बेटी की शादी के लिए बड़े चिंतित थे, बड़े चिंतित, और उनकी पत्नी क्या नाम, मेनका, ये दोनों चिंतित हैं। नारद जी आ गए और लड़की को समझा दिए, यदि पर कोई है जगत में शंकर है तुम्हारे लिए, और उनके गुरु का बखान किया, लड़की को समझ में आ गया पूर्व जन्म का संस्कार भी, बस उनके अतिरिक्त और शादी नहीं करेंगे, माता पिता को मालूम पड़ा जैसे ये तो इसी से शादी करेंगे। बहुत समझाया कि भूत प्रेत वाले पिशाच वाले सांपों से अलंकार बनाने वाले इस पागल औघड़ के साथ में शादी हम नहीं करेंगे, किसी तरह से नहीं मान, शादी करेंगे तो उसी तरह, नहीं तो मैं कुंवारी रहूंगी या मर जाऊंगी बीस खाकर, किंतु शादी अब हमारी शादी हो गई है, आर्य नारियों का संकल्प भी पीछे शादी है, बहुत चेष्टा की उससे नहीं मिलने पर। शंकर जी ने अपना वेश बदल करके दूसरे ऋषियों का रूप धारण करके उनके पास में जाकर के ठगने की बहुत चेष्टा की, किंतु उसमें भी वो ठीक रही। अंत में बड़ी मुश्किल से शादी इच्छा नहीं रहते हुए की, शादी हो जाने के बाद में ये सभा जुड़ी थी, विशेष किसी कारण से सभा हुई थी, जगत के हित के लिए, ये सब लोकपाल हैं। उसी समय में दक्ष प्रजापति बड़े सूर्य के समान तपता हुआ वहां पर आया, आते ही ब्रह्मा जी तो उसके पिता हैं, पिता के पिता हैं, इससे वो चुपचाप बैठे रहे, उनको प्रणाम उसने किया, इसने उन्होंने कहा कि मंगलम भवतु, तो तुम्हारा कल्याण वो कह दिया, और वो सभा में बैठा और बाकी सभी लोगों ने उठ करके उसका अभिवादन किया, सभी लोग उठ करके खड़े हो गए, उसका प्रभाव ही ऐसा था। इंद्रप्रद की देवता लोग भी थे उसमें, ऋषि महर्षि लोग थे, सब उठ करके खड़े हो, शंकर जी चुपचाप कुछ ध्यानस्थ होते हुए उस समय थे। उसी समय में इनका अपमान करते हुए कहा, अरे बंदर मरकट मरकट जैसा तू देखने, मैंने देखा ही अपनी लड़की को तुमसे शादी की, तुम कौभोरी पिचासी जैसा है, ऐसे लोगों के साथ में रहते तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैं जनता को शादी नहीं कर, नारद जी ने आकर के गड़बड़ सब कर दिया। अरे ये मरकट की तरफ मैं देख रहा है, यहां पर सब देवता लोग उठ करके खड़े होकर के मेरा अभिवादन किया, अरे तुम तो हमारा बेटा लगता है ना, बेटी का पति भी बेटा ही होता है, दामाद बेटा होता है, तो तुम हमारा बेटा के रूप में तुम अभिवादन नहीं कर सकता था, और ऐसे कह करके उनको अभिसंपात किया। बात बहुत बढ़ गई। उस समय शंकर जी मनी मन में कह रहे हैं, सत्यम विशुद्धम वसुदेव सप्रीतम जदीयते तत्र कुमान अपावृत सत्ये च तस्मिन् भगवान वासुदेवो हि अधक्षजो मे मनसा विधीयते सत्यम विशुद्धम। अर्थात विशुद्ध स्वरूप सत्व स्वरूप, विशुद्ध सत्व होने पर माया से उस सत्व का कोई भी, उस सत्ता का जिसमें माया का कोई भी संबंध नहीं है, जो भगवत स्वरूप है, जो भगवान के स्वरूप को, स्वरूप शक्ति को और उनके परिकरों को जो प्रकाशित करता है, उसको विशुद्ध सत्व कहते हैं। उसी को विशुद्ध सत्व को ही वसुदेव कहते हैं, शुद्ध। जदीयते तत्र कुमान अपावृत, जिसमें जो कुमान अतत भगवान है, अपावृत पावृता माने होता है आच्छादित, अपावृता माने अनच्छादित, भी शुद्ध रूप में भगवान वहीं पर विश्राम करते हैं। सत्य तस्मिन् भगवान वासुदेवो तदीयते, वहीं पर प्रकाशित होते हैं, वहीं पर विश्राम करते हैं, और जगह नहीं, अशुद्ध सत्वों में नहीं। इसलिए वो जो भगवान हैं वासुदेव, अधोक्षजो अधाकृतम अतिक्रांतम अक्षजम ज्ञानम जीनस, अक्षज ज्ञान से अतीत है, अक्षज माने इंद्रियों से जो ज्ञान लिया, आंख कान नाक इत्यादि के संपर्क से जो ज्ञान होता है, इससे अतीत है। वहां पर ये ज्ञान काम नहीं करता भाई, वो बुद्धि भी नहीं काम करती, उसमें तो मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपके शरणागत हूं, इतना कहने के साथ साथ वो ज्ञान आ जाएगा। किंतु जब तक हमको यह है बुद्धिमत्ता का ध्यान, अभिमान, बुद्धि बल, यह जागृति, तब तक वो नहीं आती। इसलिए सर्वधर्मान प्रत्यजमहाम एकम शरणम बजा, अथवा नयात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया बहुना स्तुते न जमेश एव बिनते बिनते, जो इसको ये कहता कि आप ही हमारे वर्णीय हैं, कभी वो कृपा करता है। ही अध्यक्ष जो, वो जो अध्यक्ष वासुदेव भगवान है, मे मनसा विधीयते, हमारे मन में, हमारी आत्मा में, मन माने यहां आत्मा, शंकर जी का कोई मन नहीं है जाति, वो शुद्ध सत्व है, किंतु मालूम पड़ता है अशुद्ध सत्व और तामसिक सत्व से मिले हैं, किंतु नहीं, स्वयं है वो प्रकृति से आदि, किंतु उनके द्वारा काम करा लेते हैं, जैसे जल में कमल, ऐसे ही हमारा कल्याण विधान करें। कृष्ण भगवत ज्ञान संबिते रसार ब्रह्म ज्ञान आदि सत्तार परिवार, अब इसकी कल व्याख्या करेंगे, आज बहुत रास हो आज ही कर कल्प स्वरूप Ah
Yeah. नमने गौरवतिशे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शिशुभानुसुते प्रणमामि हरे प्रिये आदेविका कुकुर्भरकदयाद्यवाचा जाते निपत्तभूविदण्डवतौडभटारति अस्यापुषादमबुदस्य जनस्य कृत्वा कान्तनिकेतगणे गणनम् विदे अङ्गश्यामविच्छताभिगवितो मन्दिकृतेन्दीवरम् चट्टञ्जाकुलरोऽपि शङ्कितधतमपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्य निवासिनम् हृदिरसत्तामाभिरामोतरम् राधास्कन्द निवेशितो जलभुजम् ध्याये दामोदरम् भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्ग मध्यै कृपामयि त्वाम् शरणम् प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायादे त्वन्नय माम चरणान्तिके यत् किं करिषु कंसः कंसाकृतानि नित्यम् परस्य पुरुषस्य सुखन्नौ जस्यापदाश्रिते विश्वानि जय तत् के विकुञ्जवनम् गणमर्जने